यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please come down. सब लोग नहीं बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी एक व्यक्ति को बताना होगा, नहीं तो मुझे माइक से बार बार बताना पड़ेगा कि सबको नीचे बैठना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोगों को जल्दी जल्दी यहां पर आना है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। तो आप सब लोगों का प्रेम सरोवर धाम में स्वागत है। राधा रानी के बरसाना धाम में एक बहुत ही सुंदर और उत्कट स्थान है ये प्रेम सरोवर, और ये पूरा सरोवर जो है वो प्रेम वन में है। और इसमें कई आचार्यों के अनुसार राधा रानी और कृष्ण की सबसे पहले भेंट हुई थी। सबसे पहली भेंट तो उनकी राधा रानी के जन्म समय पर हुई थी, लेकिन उस समय राधा रानी पलने में थी और कृष्ण भगवान भी रेंगते हुए आ रहे थे। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, और 3 साल के बाद में जब बहुत सारा कंस की ओर से आतंक हुआ तो उपानंद बाबा ने सूचना दिया कि अभी हमें यमुना किनारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यमुना किनारे अभी हमारा जो उद्देश्य था आने का वो सफल हो गया है और संतान प्राप्ति हो गई है, आपको राधा रानी की, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हमें अभी इस संकट के जगह से निकल कर वापस घर जाना चाहिए, नंदगांव बरसाना। तो उसके बाद में वो पूरी वृषभानु महाराज का राज्य रावल से यहाँ पर स्थलांतरित हो गया और पूरा नंद महाराज का राज्य गोकुल से नंदगांव में स्थलांतरित हो गया, शिफ्ट हो गए वो। और यहाँ पर एक दिन राधा रानी और गोपियाँ सब लुका छुपी का खेल खेल रही थी, आँख मिचोली, उसमें एक व्यक्ति की आंखें बंद करनी होती है, बाकी लोग छुप जाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं जिसको आँख को पट्टी लगाई है, और उसके बाद में फिर अगर वो पट्टी लगाने वाला व्यक्ति कन्या किसी को पकड़ लेती है तो फिर वो उसको पट्टी लगती है, बाकी लोग छुपते हैं। ऐसा खेल यहाँ पर खेला जा रहा था प्रेम वन में, जहाँ पर हम बैठे हैं, ये प्रेम सरोवर प्रेम वन के अंदर है। तो उस समय श्री कृष्ण भी सुने थे कि यहाँ पर कोई सुंदर लाली रहती है, उसके खोज में वो सज धज कर निकले थे। तो वो भी इस सघन वृक्षावली के कुंज में आकर छुप गए, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, अलग अलग प्रकार की प्राइवेसी होती है उसके अंदर। तो ऐसे ही एक सघन वृक्षावली के निकुंज में वो आके बैठ गए और योगा योग से राधा रानी भी वहीं पर आकर छुपने के लिए आई। और जैसे आई तो राधा रानी के नज़रों के सामने वो सुंदर सा नीला बालक पीताम्बर पहने हुए मोर मुख धारण किए हुए नजर आता है। तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें प्रेम के भावना सागर की तरह उमड़ती है हृदय में, और दोनों एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जब इस सुंदर स्वर्ण कांतिमयी परम सुंदरी राधा रानी को देखते हैं तो राधा रानी उनको मिलने ऐसे आ रही है, उसके पहले वो बेहोश हो जाते हैं प्रेम से, उसके पहले ही वो बेहोश हो जाते हैं। तो राधा रानी बहुत ऐसे अचंभित हो जाती है, अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो वो उनको सवारने जाती है, और सवारने जाती है उतने में वो जो चोर बनकर पट्टी बांधी थी जिसको आँख मिचौली खेल में, वो बुलाते हैं, अरे पकड़ी गई, चलो चलो श्री जी पकड़ी, चलो चलो। तो राधा रानी दुविधा में आते कि अभी मैं इस बालक को सवारूं कि चली जाऊं, सवारूं तो उसमें बार बार पुकार आती है, ए राधे वृषभानु नंदिनी क्या कर रही हो किशोरी, चलो जल्दी। तो वो छोड़ के चले जाती है उसको, और श्याम सुंदर जी वहाँ बेहोश पड़े हैं। जब लौट के आती है तो वो कहते हैं मुझे आगे नहीं खेलना है, तो सब लोग घर चले जाते हैं। और राधा रानी बड़ी व्याकुल हो जाती है, उस दिन से खाना पीना खेलना अपने कमरे के बाहर आना सब बंद कर देती। तो कीर्ति मैया बड़ी परेशान हो जाती है, वो उनको पूछती क्या हुआ तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं, कैसे बताएंगे मैया को। तो ललिता को बुलाती हैं और ललिता को कहती है कि ये देखो कन्या कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, इसको कुछ करो, इससे बात करो। तो वो एकांत में जाके बात करती है, तो राधा रानी उनको उस दिन में क्या हुआ बताती है कि तुमने मुझे इतनी बार बुलाया तो मैं वहाँ रुक नहीं पाई, लेकिन वहाँ पर एक सुंदर लाला मुझे देखकर बेहोश हो गया, न जाने कैसे जादू कर गया मेरे हृदय पर, मैं भाव विभोर होकर प्रेम में डूब रही थी, उसमें वो बालक बेहोश हो गया और तुम्हारी बार बार बुलाने से मैं वहीं छोड़कर उसको वापस आ गई। तब से मुझे ना अन्न अच्छा लग रहा है, ना जल अच्छा लग रहा है, ना खेल अच्छा लग रहा है, ना कुछ भी अच्छा लग रहा है, दिन रात उसकी याद आती रहती है। ललिता उसको उसका वर्णन पूछती है तो फिर बताती है सब कुछ, पीताम्बर नीला रंग मोर पंख सब बताती है। तो कहते हैं मैं उसको जानती हूँ, मैं उसे ज़रूर आपको मिलाऊँगी। तो फिर यहाँ से वो इस वन से घर जाते हैं, घर से नंदगांव की ओर जाने लगती है, और नंदगांव जाते ही वहाँ पर यशोदा मैया उसको बुलाती है, अरे ललिते जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भैया, क्या बात है। अरे मैं बड़ी परेशान हूँ, हमारा लाला जो है कई दिन हो गए, ना माखन खा रहा है, ना खेल रहा है, ना कमरे के बाहर निकल रहा है, ना गैया चराने जा रहा है, ना दोस्तों से मिल रहा है, परेशान हो गया वो, दिन भर बिस्तर में बैठ कर रोते रहता है, पता नहीं क्या बीमारी हो गई उसको, क्या दुख है उसको, क्या परेशानी है। तो ललिता देवी कहती है कि मैं उसको एकांत में मिलना चाहती हूँ, फिर उसकी जो उसका जो कष्ट है वो समझ सकती हूँ। जिस तरह से मिलना है वैसे मिलो, इसे ठीक करो। तो ललिता उनको एकांत में जाके मिलती है, तो वो भी बताते हैं कि उस दिन मैं ऐसे घूमते घूमते वृषभानुपुर में गया था बरसाने में, मैंने सुना था वहाँ पर एक सुंदर कन्या है, उसके दर्शन करने गया था और कुंज में बैठा था, उतने में वो मेरे सामने आई और उसको देखकर मैं इतना घायल हो गया, उसके प्रेम में इतना घायल हो गया कि वहीं पर मैं बेहोश हो गया प्रेमातिरेक से। तब से मुझे ना माखन अच्छा लग रहा है, ना दोस्त अच्छे लग रहे हैं, ना गैया अच्छी लग रही है, कुछ भी करने का दिल नहीं हो रहा है। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है और मैं उसे मिलाना चाहती हूँ। तो वो मैया यशोदा को कहती है, मैया मुझे इसे अच्छी तरह इलाज करना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा मुझे उसे। बोले कहीं भी ले जाओ, ठीक करके ले आओ। तो फिर ललिता देवी का एक कुंड है नंदगांव में, ललिता कुंड, देखें अगर समय मिलेगा तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो वो कुंड के बारे में अभी बता देता हूँ। ललिता जी का एक कुंड है नंदगांव में, जैसे ललिता जी का घर तो ऊंचा गांव में है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, लेकिन नंदगांव के अंदर उनका एक कुंड है जिसमें से वो नंदगांव की देखरेख करती थी, क्या चल रहा है वहाँ पर उसकी खबर लेती है। जैसे हमारा होता है ना एम्बेसी जो दूसरे देश में होता है, उस देश में क्या चल रहा है उसकी खबर मिलती है, दूतावास कहते हैं उसको। तो वहाँ जाकर वो कृष्ण को नहलाती है सब सखियों के साथ में, और उसको कहती है कि उसको अगर मिलना है जिसके लिए आप व्याकुल हो, तो आपको इस वेश में वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, आपको सखी वेश धारण करना पड़ेगा। तो ललिता देवी और सब सखियाँ मिलकर उनको सखी बनाती हैं, सुंदर श्रृंगार करती है गोपी का। उसका एक गांव है उसके आगे, उसका नाम है पहनावली, वो ललिता कुंड है ना, उसके आगे जाएंगे थोड़ा सा जंगल की ओर तो एक गांव है पहनावली, हमने वहाँ पर एक बार जगह भी देखी थी 12 एकड़ की, बहुत पुरानी बात है वो। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर उसको सखी वेश पहनाया और फिर उसको वो बरसाने की ओर लेकर चलने लगे। तो आगे गांव आता है कजरोठा, वहाँ पर उन्होंने आखिरी श्रृंगार किया काजल लगाकर सखी को, और एक बड़ा घूंघट मार के उसको लेके आए और यहाँ पर खबर भेज दिया सखियों के द्वारा कि उनको भी अच्छी तरह सजाओ, श्रृंगार करो। तो उनका भी श्रृंगार किया और दोनों का फिर पहले ऐसे कथा कहते हैं कि दो प्रकार की कथा आती है। ललिता देवी उसको यहाँ से ले जाती है सीधे बरसाने में, और बरसाने का पहाड़ चढ़ने लगती है तो सब लोग बोलते हैं अरे कौन लाली है, कौन लाली इतनी सुंदर है। तो कहते हैं कि उपनंद बाबा की बहू है ये, नई नई ब्याही है, आपके दर्शन करने आ रही है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। तो विश्वानु और कीर्ति मैया उनको बड़ा दिल से आशीर्वाद देते हैं, फिर कहते हैं ये आपके श्री जी से भी मिलना चाहती है, तो जरूर मिलाओ जरूर मिलाओ। तो फिर ललिता देवी उस घूंघट किए हुए श्रृंगार किए हुए राधा रानी को लेकर सीधे वृषभानु महाराज के महल में, सीधे राधा रानी के कक्ष में प्रवेश करती हैं और फिर वहाँ उनका मिलन होता है, उनकी विरहग्नि शांत हो जाती है। दूसरी कथा में ऐसे आता है कि वो उनको पहले यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पर दोनों श्रृंगार करके आके मिलते हैं, फिर एकांत में संग करते हैं। ऐसा है सुंदर वन है, तो अलग अलग आचार्य उसके अलग अलग वर्णन करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से वो सही है। फिर उसके बाद में उनका अनंत बार मिलन हुआ है। एक बार वो ऐसे ही, अभी आपकी की कहानी जो बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से सुनना उसको, बहुत ही ध्यान से। तो राधा कृष्ण एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, हाँ, और एक दूसरे की आँखों में देख रहे हैं। अभी कहते हैं जब बहुत गहरा प्रेम होता है ना तो शब्द की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब बहुत बड़ी दुश्मनी होती है ना तो सामने बैठकर जोर जोर से बोलने पर सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा होता है ना। जब हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं तो इतने पास में रहते हैं लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है ये नहीं सुन रहा है, वो क्या बोल रहा है ये नहीं सुन रहा है। लेकिन ट्रेन में देखते हैं ना हम लोग कभी कभी नई नई शादी के हुए हस्बैंड वाइफ वैसे हमारे सामने आते हैं ट्रैवलिंग में, और हमारे एकदम बाजू में बैठे हुए हैं और घंटों घंटों बात करते हैं लेकिन क्या बात करें किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। दिन भर बात करते हैं, पूरे ट्रैवलिंग में बात करते हैं लेकिन बाजू वाले या सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ता है वो। तो जब प्रेम होता है ना तो शब्द भी सूक्ष्म हो जाते हैं और हृदय हृदय से बात करता है, आंखें आंखों से बात करती है, स्पर्श के द्वारा बातें होती है, बहुत सारी हृदय की बातें नज़रों से और आंखों से और स्पर्श से की जाती है। तो वैसे ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं, ये कुंड वुंड तब नहीं था, एक दूसरे को देख रहे हैं और आँखों में देख रहे हैं, आँखों की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या होता है, बीच में एक भंवरा आता है काले रंग का, बस हूं ऐसे गोल गोल गोल, कभी इनके कभी इनके बीच में घूमता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, आपका मेडिटेशन भंग हो जाता है। तो कृष्ण जो है वो उनके सखा और सखियां एक जगह खेल रहे दूर, अपने अपने जगह पर थोड़े दूर तक, तो कृष्ण जो है वो बुलाते हैं मधु मंगल को और कहते हैं मधु इस मधु को हटा दो। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से सुनना, बाद में पूछना नहीं क्या बोला, ऐसे पूछना नहीं, ध्यान से सुनना क्या बोला उन्होंने, मधु इस मधु को हटा दो। तो मधु मंगल आया और उसने बड़े ही प्रयास से उसको हटा दिया और क्या बताया कृष्ण को, मधु चला गया, चिंता मत करना मधु चला गया। तो राधा रानी सुन रही है मधु चला गया, अभी तीन मधु है, एक भवरा मधु है, एक मधु मंगल मधु है और जो सामने जिसकी आंखों में देख रहे हैं वो भी मधु है, उसका भी नाम मधुसूदन है। तो राधा रानी उनके सामने बैठकर उनकी आंखों में देख रही है, फिर भी उनको लगता है कि मधुसूदन चले गए। तो ये विचार से ही कि ये चले गए, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो कृष्ण को समझता नहीं क्यों आंख क्यों रो रही है, लेकिन आप लड़कियों को आते थे ना, कोई भी रोएगा बाजू में तो आप भी रोने लगती हैं, आपको पता नहीं क्यों रो रही है रोने लगती है, कोई भी रोएगा तो आप रोने लगती है ना। तो राधा रानी रो रही है तो श्री कृष्ण भी रोने लगते हैं, अरे कृष्ण रो रहे हैं तो भी रोने लगती है और रोने लगती है, और ये जिसको देख कर रोने लगते हैं, दोनों रोने लगते हैं। है तो कुछ नहीं, सामने तो बैठे हुए, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ये रोने का मतलब क्या है। इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं, यानी कि ऐसा विचित्र प्रेम है राधा कृष्ण का, वो समझ में आना मुश्किल है बहुत। थोड़ा आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए, समझो आपके बहुत सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं यहाँ पर, कन्या हो गई और समझो पावनी का विवाह निश्चित हो गया समझो, तो राधा रानी प्रिया तुरंत रोने लगेगी, अभी तो घर पे ही है, नहीं अभी जाएगी अभी जाएगी अभी जाएगी, इसी बात से रोज रोएगी। अभी शादी जब होगी उस दिन जब घर से निकलेंगे हॉल के लिए जाने के लिए तो रोएंगे। इट्स कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी विरह, मैं अभी विरह हो नहीं हुआ है लेकिन अभी वो होने वाला है आगे। जैसे अभी माधवानंद प्रभु का लड़का अभी अमेरिका चला गया, तो भी वो उसका एडमिशन हो गया तो ही घर में मार होने लगी उसकी, अभी अभी जाएगा अमेरिका, छः महीने छः ही साल नहीं आएगा, अभी जाएगा जाएगा, इसी से रोने रोना हो रहा है रोज का, आने वाले विरह के लिए रोते हैं। तो वैसे मधु सामने बैठा है लेकिन वो सुनकर लग रहा है कि जाएगा, ये अभी जाएगा, वो तो बोल रहे चला गया तो इतना रोते हैं। मैं हमेशा ये क्या करता है, आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि लैक्रिमल सैक है ना अश्रु ग्रंथि, कितना होता है उसके अंदर टीयर्स 5 ml 10 ml 20 ml, लेकिन इतना रोए कि ये पूरा कुंड बन गया उससे, जिसका नाम प्रेम सरोवर है। तो मैंने एक जगह उसका विवरण पढ़ा कि राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है ना, उसके अंदर इतना आवेश है, उसके इतना अंदर बल है, इतनी अमृतत्व है उसके अंदर कि भौतिक दृष्टि से छोटी सी अक्षरगुंत से भी इतना बड़ा कुंड जय समान इतना आकार का जल निकल सकता है। इसको प्रेम का आवेश कहते हैं। और भी उसके वर्णन दिए गए हैं, मैं बताऊं आपको थोड़े सी, जैसे पृथ्वी के ऊपर बांस बनता है और बांस से मुरली बनती है और मुरली कृष्ण को दी जाती है, फिर कृष्ण के होठों में जो अमृत है, कृष्ण के हृदय में जो अमृत है, वो जब उसमें हवा देते हैं तो उसमें से वो अमृत मुरली के माध्यम से ध्वनि बनकर सब जीवों के कान में प्रवेश करता है। वो जैसे ही वो कान में प्रवेश करता है तो हृदय में ऐसे तरंगे उठती है प्रेम की, और वही जो अमृत अभी वो कृष्ण के होठों से मुरली की ध्वनि से कान में से हृदय में प्रवेश करता है, तो वही अमृत जो है वो आंखों से अश्रु के रूप में बाहर निकलता है और वो अश्रु पृथ्वी पे गिरते हैं, अमृतमयी अश्रु, और पृथ्वी उसमें उसको पोषण प्राप्त करती है, दिव्य पोषण। ऐसा ही अद्भुत साइंस है, इसको कोई रिसर्च नहीं कर सकते इसके बारे में, कैसा रिसर्च है समझेगा नहीं किसी को, ये प्रेम की भाषा को श्रद्धा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के अश्रुओं से ये प्रेम स्वरूप बना है। साक्षात उनके प्रेममय अश्रु है, अमृत है ये पूरा, प्रेम से भरे हुए भाव विभोरता के अश्रु हैं। तो हम सब लोगों को वहाँ पर बड़ा बड़ा गंभीर रहना चाहिए। इसलिए भाग्यता कुछ लोग लेट आए तो उन्होंने कम से कम आधा घंटा कीर्तन किया बड़े प्रेम से। ये बहुत ही करोड़ों गुना आत्मा के लिए लाभकारी है जो हमने यहाँ पर बैठ के किया। तो आप सब लोग इस कुंड को प्रणाम करो। ये कुंड बहुत उत्कट है, उत्कट यानी वेरी इंटेंस इमोशनली स्पिरिचुअली। इसको भौतिक बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है। और फिर जब कुंड बन गया भगवान की इच्छा से और भगवान की लीला के माध्यम से, तो यहाँ पर भगवान ने डोंगी लीला किया। डोंगी लीला यानी बोट, नौका विहार, अनंत नौका विहार का आनंद लिया भगवान ने। यहाँ पर जल केली किया गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ में गौचारण किया, गौओं को पानी पिलाया, जल में कूद कर छलांग लगाई, गोपियों के साथ में एकांत में जल कीली यहाँ पर की, सुंदर वृक्ष यहाँ पर सानिध्य में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया। इस प्रेम वन में गोपियाँ फूल बिनने के लिए भी आती थी। आपको एक बता दूं मैं, एक यहाँ पर उत्सव होता है सांझी उत्सव, कितने लोगों को पता है सांझी? सांझी उत्सव यानी गणेश चतुर्थी होती ना, तो गणेश विसर्जन होने के बाद में चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा आती है ना, तो पूर्णिमा के बाद में पितृपक्ष शुरू होता है 15 दिन के लिए। तो पितृपक्ष के दिन, पितृपक्ष के समय 15 दिन के लिए सांझी पूजन होता है। सांझी देवी होती है, और सांझी देवी का बहुत सुंदर सुंदर फूलों से और गोबर के नक्शियों से सांझी बनाते हैं। सांझी यानी डेकोरेशन लाइक रंगोली मेड बाय काउडंग, और उस पर फूलों का बहुत सुंदर सजावट करते हैं, और वो सांझी रात शाम को पूजते हैं संध्या के समय। तो गोपियाँ और राधा रानी यहाँ पर सांझी पूजन के लिए फूल बिनने के लिए आती थी। सब सुंदर, तभी उनको कृष्ण एक बार मिले थे यहाँ पर, बहुत नोकझोंक हुई थी उनके साथ। सब लोग प्रार्थना कीजिए, थोड़ा मैं बताऊँगा आपको अश्रुओं का अर्थ, उसके आगे मैं आपको दूसरी जगह ले जाऊँगा, वहाँ की कहानी यहाँ बताऊँगा। हाँ, तो वहाँ पर केवल दर्शन करके आपको चले जाना है। तो वो कहानी ऐसे कि यहाँ से हम जब आप लोग रास्ता भटक गए थे ना, तो कौन सी ओर गए थे आप लोग? नहीं, रास्ता भटक के कहाँ चले गए थे आप लोग? नंदगांव की ओर पहुँच गए थे क्या? नंद बाबा को मिल के आए आप? पवन सरोवर जाके आए? जय, धन्य हो आप, बहुत धन्य हो, जय हो। 5 मिनट का रास्ता था हमारा यहाँ पर, जय हो। यहाँ पर जो है ना, हम लोग बनाते ही कुछ योजना है और समझते हैं कि हम नियंत्रण कर रहे हैं, हमारी योजना से काम चल रहे हैं, लेकिन होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। कहाँ भटकाना है आपको, कहाँ चक्कर काटना है, सब उनके हाथ में है। हम लोग केवल हाँ जी करते हैं, अपना भजन करते रहते हैं, बस जो भी हो जाए सब सही है। एवरीथिंग इज फाइन परफेक्ट बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। एज लॉन्ग एज यू आर इन ब्रज ब्रीदिंग द एयर, फीलिंग द कोल्ड एयर, वट एल्स यू वॉन्ट? देयर इज कथा और नो कथा, एज लॉन्ग एज यू आर हियर थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। तो यहाँ नंदगांव के रास्ते पर राधा रानी जा रही थी, नंदगांव से कृष्ण आ रहे थे। तो मैया ने कहा था, कीर्ति मैया ने नंद राधा रानी को, कि आपको देवी का पूजन करना है आज। होता है ना, शुक्रवार को देवी का पूजन होता है, तो हमारी जो गोपियाँ हैं वो हमेशा नंदी बंदी और बहुत सारी देवियों का पूजन करते रहते हैं, काली माता दुर्गा देवी का। तो कहने का तात्पर्य है कि राधा रानी देवी को ढूंढ रही है पास में, और उनको देवी नहीं मिल रही है। तो श्री कृष्ण वहाँ से आते हैं, अचानक किसी बीच में से चले आते हैं किसी वन में से, वो कहते हैं क्या कर रही हो? कहते देवी का पूजन कर रही है, देवी का पूजन के देवी ढूंढ रही हूँ। अरे इधर ही देवी है, देखो मैं वहीं से आ रहा हूँ, अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, अब जाओ पूजा करो। तो भोली भाली राधा रानी जाती है, अंदर देखते हैं पूरा वन ढूंढ के आते हैं, किधर देवी नहीं मिलती। वहीं से बाहर आते जहाँ यहाँ बाहर आए थे, वो उधर ही खड़े हैं, हाँ वहीं ठाड़ो है। तो कह रहे पूजा नहीं हुई, आपने कहा देवी है, देवी तो मिली नहीं मुझे। अरे मैं तो वहीं से आया दर्शन करते हुए, अभी नहीं मिले आपको, जाओ उधर ही जाओ, देखो आप ठीक से देखो। बेचारी भोली भाली दोबारा जाती है, पूरा वन ढूंढ के आती है, किधर भी देवी नहीं मिलती है, फिर भी वहीं खड़े है वो जो बाहर आते हैं। क्या हुआ, पूजा नहीं हुई? नहीं अभी तक नहीं मिली देवी। अरे उधर ही तो है, जाओ एक बार और। बेचारी और एक बार जाती है, और एक बार जो जाती है, तो पिछली 2 बार में जहाँ जहाँ चप्पा चप्पा छान मारा था उसी एक जगह पर मिल जाती है देवी। तो बड़ी खुश हो जाती है, पता नहीं क्या चमत्कार है, मैं तो यहां दो बार आके चली गई, अब कैसे प्रकट हो गई, पता नहीं क्या इच्छा है देवी की। आज तुरंत अपना सामान खोलती है और तुरंत क्या ना वो धूप लगाना चालू करती है, दीपक जलाना चालू करती है और आरती शुरू करती है, धूप जगह दिखाती है और दीपक दिखा रही है बड़े प्रेम से कि आज मेरा माता जी का संकल्प आज पूरा हो गया। और कैसे है ना, आप सोचो अभी आप देवी के सामने खड़े हैं और आप देवी को पूजन कर रहे हैं, क्या कैसे करते हैं हम लोग, चार बार चरणों में, दो बार नाभि में, तीन बार मुख कमल पे और सात बार सर्वांग पे। कर रहे हैं आप लोग आरती कर रहे हो, करते रहो ऐसे आरती। जब सात बार सर्वांग पे, तो जैसे पैरों में जा रहा है तो पैरों में दर्शन हो रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो चेहरे का दर्शन हो रहा है। अचानक देवी हंस पड़ती है, कभी आपने ऐसा अनुभव किया है, आपकी देवी कभी हंसी है आपको देखकर? तो देवी हंस पड़ती है तो राधा रानी को बड़ा अचंभा होता है, अरे देवी कैसे हंसी। नहीं ऐसे कहते हैं, पहले हंसी नहीं, वो पहले उसने आंख बंद कर दी, आंख मीच दी, शी ब्लिंक्ड, और फिर उसको इतना आनंद हो गया और अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया, तो वो हंस पड़ी देवी। तो वो समझ गई देवी भी कोई नहीं, श्री कृष्ण स्वयं है, देवी बन के खड़े हैं, बोला अच्छा देवी पूजन हो गया आज। तो वो देवी जो है ना, वो अभी भी वहां खड़ी है, वो देवी नहीं है, वो कृष्ण है भगवान। तो अभी जब भी वो आंख मिचती है ना, ब्लिंक करती है ना, तो राधा रानी के आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, अचंभे के आंसू आते हैं, आश्चर्य के, अरे ऐसे भी हो सकता है, वाह क्या बात है। तो वो रोने लगती हैं, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जैसे कुछ लोगों की अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना आंखों में, तो भी आंसू आ रहे हैं, तो वैसे आंसू आने लगते हैं। तो देवी के भी आंखों में आंसू आने लगते हैं, देवी की आंखों में आंसू देखकर ये भी इसके आंसू बढ़ते हैं, इसके आंखों में देखकर देवी के आंसू बढ़ते हैं, और दोनों के आंसू मिलकर वहां पर भी एक कुंड बना है जिसका नाम है प्रेम विवल कुंड। क्योंकि जब वो प्रेम से विवल हो गए, भाव विभोर हो गए, एक अर्थ विवल का गहिवर भी है, प्रेम से गहिवर हो गए वो गहिवर, तो दोनों के आंखों से अश्रु बने और उसमें से कुंड तैयार हुआ। वही अश्रु, ये भी अश्रु है लेकिन उसमें भी अंतर है, ये एंटिसिपेटरी सेपरेशन के अश्रु हैं, वो अचंभे के अश्रु हैं। और भी एक बहुत सारे अश्रुओं के कुंड यहाँ पर, एक मान मान सरोवर है, यमुना पार है वो वृंदावन के, तो उधर राधा रानी रास लीला में श्रृंगार करके पहले पहुंच गई थी, कृष्ण नहीं आए थे, लेट आ गए उस दिन, तो नाराज होकर यमुना पार गई, बैठी और इतनी रोई, गरम गरम क्रोध के अश्रु, मान के अश्रु, हॉट हॉट है टीयर्स, उससे वो मान सरोवर भाव बनाया है। वहां पर शिवजी ने स्नान किया था ललिता के आदेश के अनुसार, और शिवजी को गोपी शरीर प्राप्त हुआ था। देखो कितनी शक्ति है अश्रु में, उस अश्रुओं के कुंड में इतनी शक्ति है कि ललिता ने कहा गोपी बनना है तो जाओ वहां पर स्नान करो, गोपी शरीर प्राप्त करोगे और गोपी भाव भी प्राप्त करोगे। तो शिव जी भाग के गए लांग कर जमुना जी को, और वहां डुबकी लगाई है तो तुरंत वो गोपी बन गए, गोपेश्वर महादेव, और भाग के लौट के आए। एनीवेज, भक्ति के जीवन में अश्रु एक महत्वपूर्ण अंग रखता है, अश्रुओं का बहुत महत्व है। लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो हमें कभी भी दुनियादारी की चीज़ों के लिए अश्रु नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की चीज़ों के लिए भगवान को अलग रखते हुए जो विषय हैं, उन विषयों में हम मग्न होते हैं तो कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, उसमें जो अश्रु बहाते हैं वो हमें इस दुनिया के दुनियादारी में बहुत ज़्यादा डुबाते हैं। यू गेट मोर एंटैंगल्ड एंड लॉस्ट इन द वर्ल्डली अटैचमेंट व्हेन यू शेड टीयर्स फॉर द वर्ल्डली थिंग्स। अश्रु बहाना है तो केवल कृष्ण के लिए बहाना चाहिए। सबरे तेरे ही लिए ये बरसते आंसू, रोकने पर नहीं रुकते ये हमारे आंसू। ऐसे गोपियां कह रही है, जब कृष्ण चले जाते हैं तो भाव रूप में कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो भाव रूप में जो कृष्ण प्रकट हुए वो गोपी को पूछते हैं तो क्यों रो रही है, तो वो कहते हैं आपके लिए रो रही हूं। तो वो हाथ ऐसा आगे करते हैं उसके आंसू पहुंचने के लिए, तो गोपी क्या कहती है कि मत छूना मेरे आंसुओं को, अगर आंसू को छुएंगे तो तुम्हारे हाथ में छाले हो जाएंगे, इसलिए मेरे आंसुओं को मत छूना। कितना सुंदर भाव है। तो ये सब भाव रूप का लीला है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। कृष्ण द्वारका में है, भाव रूप में दर्शन दे रहे हैं और गोपियों के भाव से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जब कृष्ण के लिए हम आंसू बहाते हैं तो हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और जब हम अपने लिए, अपने भौतिक इच्छाओं के लिए न प्राप्त करने के लिए रोते हैं, तो कहते हैं जो भी आध्यात्मिक प्रगति किया है वो भी धुल जाती है उससे। इट फ्लोज अवे, इट गेट्स वॉश्ड अवे। द टीयर्स विच आर शेड फॉर वर्ल्डली अटैचमेंट्स वॉश अवे ऑल द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो इसलिए हम निश्चय करेंगे यहाँ पर प्रेम सरोवर पर कि हम हमारे आंसुओं को बचाए रखेंगे श्री कृष्ण भगवान के लिए, और यहाँ वहाँ की दुनियादारी के लिए उसको नहीं खोएंगे। तो कृष्ण के विषय में कुछ होगा तो हमारे आंसू हम बाहर निकाल सकते हैं, बाकी सब चीज़ें वो हमारे आंसुओं के योग्य नहीं हैं। नॉट वर्दी फॉर आवर टीयर्स टू कम आउट। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए कि हम रोएं तो आपके लिए रोएं और आपके लिए हमारे आंसू बहाएं। दिल से प्रार्थना कीजिए और फिर इस कुंड का आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, हृदय से प्रार्थना कीजिए कि हम आपके हो जाएं और किसी के लिए न रोएं, केवल आपके लिए रोएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।